नमस्कार भारत, मंगलवार 15 सितंबर, मैं हूं निखिल रंजन। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने किया राज्य भर में प्रदर्शन, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में। दिल्ली में डेंगू ने उठाया सिर, हरकत में आई सरकार, अब तक 1000 से ज्यादा लोग बीमारी की चपेट में।
पब्लिक से कहना है कि भाई आप थोड़ा सा पैनिक ना हो, डेंगू इज वेरी मच इजीली क्यूरेबल, इसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं होती है।
फैला उजियारा में आज कहानी कन्नड़ के क्रांतिकारी कवि वसव की।
मैं अज्ञानी, ताल छंद को कैसे जानूं, सुरलय का गणित मुझे मालूम नहीं है। मैं मात्राओं की गणना से हूँ कब परिचित, हो सुख दुख से परे प्रभु तुम, मेरा गायन मेरा प्रेम सब तुम्हें समर्पित।
अखबारों की समीक्षा के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन सबसे पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। इलाहाबाद हाईकोर्ट के शिक्षा मित्रों की नियुक्ति को अवैध ठहराने के बाद प्रदेश भर में आंदोलन शुरू हो गए हैं। कल एक शिक्षा मित्र ने आत्महत्या कर ली और एक अन्य की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। यूपी सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। संघर्ष कर रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और राजकोषीय घाटा कम करने के लिए ब्राजील की सरकार ने खर्च में कटौती करने और कर बढ़ाने के 15 अरब डॉलर के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। पिछले साल राष्ट्रपति ज़िल्मा रूसेफ के चुनाव अभियान के अहम वादों में शामिल शिक्षा और आवासीय सुधारों को भी कटौती का झटका लगेगा। सरकार को उम्मीद है कि खर्च में कटौती कर वह 7 अरब डॉलर बचा लेगी। ब्राजील के वित्त मंत्री ज़ोआक्विम लेवी ने कहा,
A gente sabe que a gente vive um momento importante, um momento difícil.
हम सभी जानते हैं कि हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और सरकार को कुछ समायोजन करने हैं। हमने यह तय किया है कि अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटे बिना हम 7 अरब डॉलर की बचत कर रहे हैं। यूरोपीय संघ के देशों के गृह मंत्री ब्राजील्स में हुई एक अहम बैठक में मध्य पूर्व से आए 1,20,000 प्रवासियों को कोटा के आधार पर सभी सदस्य देशों में बांटने के विवादित प्रस्ताव पर एकमत से सहमत नहीं हो सके हैं। जर्मनी और लग्जमबर्ग का कहना है कि अधिकतर देश सैद्धांतिक तौर पर तैयार हो गए हैं, लेकिन अधिक जानकारियां अक्टूबर में होने वाली बैठक के बाद ही दी जा सकेंगी। ब्राजील्स में बीबीसी संवाददाता का कहना है कि कुछ मध्य यूरोपीय देशों के विरोध के बावजूद इस योजना को लागू करने के लिए यूरोपीय संघ के पास जरूरी समर्थन मौजूद है। कुछ देशों का तर्क है कि कोटा व्यवस्था अधिक प्रवासियों को खतरनाक सफर तय कर यूरोप पहुंचने के लिए प्रेरित कर सकती है। हंगरी में प्रवासियों को अवैध रूप से देश में दाखिल होने से रोकने के लिए नए कठोर कानून लागू हो गए हैं। सर्बिया से यूरोपीय संघ में शामिल होने के एक अहम केंद्र को भी हंगरी की पुलिस ने सील कर दिया है। प्रवासियों को अब आधिकारिक ट्रांजिट केंद्रों पर भेजा जाएगा, जहां उनकी शरण लेने से संबंधी अर्जियां ली जाएंगी। अमरीका का कहना है कि उसे लगता है कि रूस सीरिया में सैन्य अड्डा स्थापित कर रहा है। पेंटागन के प्रवक्ता जेफ डेविस का कहना है कि बंदरगाह वाले शहर लटाकिया में पिछले एक सप्ताह के दौरान लोगों और सैन्य साजो सामान का आगमन बढ़ा है। हालांकि उन्होंने कहा कि लड़ाकू विमानों या हेलीकॉप्टरों को लाए जाने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने इससे पहले कहा था कि इस्लामिक स्टेट से लड़ने में सरकार की मदद करने के लिए सैन्य साजो सामान सीरिया भेजा जा रहा है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, स्वागत है आपका बीबीसी रेडियो की पहली सभा में। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आज निखिल रंजन के साथ। शुरुआत करते हैं भारत से। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश से बेरोजगार हुए 2.25 लाख शिक्षा मित्रों ने सोमवार को राज्य भर में प्रदर्शन किया और जगह जगह ट्रेनों को रोका। नौकरी जाने के बाद एक शिक्षा मित्र ने आत्महत्या कर ली और एक की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वहीं यूपी सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। एक रिपोर्ट के साथ समीर आत्मज मिश्र।
उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों से आए दिन शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं। प्रशासन उन पर डंडे बरसाता है और फिर वो अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन इस बार डंडा चलाया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने दो दिन पहले शिक्षा मित्र से टीचर बनाए गए करीब पौने 2 लाख लोगों की नियुक्ति को अवैध ठहरा दिया, जिसके बाद इन लोगों के सामने बेरोजगारी का संकट आ गया है। सोमवार को इन शिक्षा मित्रों ने राज्य भर में प्रदर्शन किया और जगह जगह ट्रेनों को रोका। खबर है कि नौकरी जाने के बाद एक शिक्षा मित्र ने आत्महत्या कर ली और एक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। शिक्षा मित्रों की बेचैनी उनकी बातों से ही समझी जा सकती है।
परिवार के साथ हम इच्छा मृत्यु आवेदन करेंगे और सरकार हमें और माननीय राष्ट्रपति से ये प्रार्थना करेंगे कि हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए।
हम लोग बहुत ज्यादा दुखी है और यही अगर स्थिति रही तो आज भी हजारों आत्महत्या हो सकती है प्रदेश में।
1,72,000 परिवारों के हित में ये निर्णय है कि हम लोग सभी स्नातक ग्रेजुएशन है और सभी लोग बाकायदा BTC धारक है, उसके उपरांत भी कोर्ट ने किस आधार पर हम लोगों को निकाल दिया।
हालांकि सरकार ने शिक्षा मित्रों से धैर्य रखने की सलाह दी और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है, बताया राज्य सरकार के प्रवक्ता और मंत्री राजेंद्र चौधरी ने।
सरकार ने भरोसा भी दिलाया, मैंने भी बयान दिया है, कल मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, शिक्षा मंत्री ने भी कहा, हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम उनके साथ हैं, लीगल प्रोसीजर है ये उन्हें भरोसा रखना चाहिए।
लेकिन इस मामले में उंगली सरकार की ओर ही उठ रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता और विधायक ओम प्रकाश शर्मा कहते हैं कि सरकार बिना किसी तैयारी के इस तरह के कदम उठा रही है।
असल में इसके लिए प्रिपरेशन पहले से नहीं की गई और बिल्कुल जैसे कि ये सरकार निर्णय ले लेती है एक तरफा, लैपटॉप बांटने हैं तो लैपटॉप बांटने शुरू कर दिए। अब किसी से कोई सलाह मशवरा थोड़ा ही है, अब ये किसी शिक्षाविद से किसी एक्सपर्ट से कोई सलाह कभी नहीं ली गई। जो 1,27,000 या 1,72,000 नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, इससे ज्यादा बुरी बात कोई हो नहीं सकती है। जो लोग गए न्यायालय में वो कहते हैं हम TET पास करके आए हैं, हमें लिया नहीं जा रहा है, और जो TET पास नहीं है वो लिए जा रहे हैं।
ओम प्रकाश शर्मा इसके लिए पिछली सरकारों को भी जिम्मेदार ठहराते हैं।
योग्यता तो किसी की जांची ही नहीं गई, वो तो ये हुआ है कि जहाँ टीचर नहीं था, सेलेक्टेड टीचर नहीं था, ग्राम प्रधानों को अधिकार दे दिया गया अपने यहाँ के नौजवान को जो इंटर पास हो उसे शिक्षा मित्र बना दो।
दरअसल उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते सरकार ने 1,78,000 शिक्षा मित्रों की भर्ती की थी। अब जब सरकार ने उन्हें पक्की नौकरी पर रख दिया तो ट्रेंड टीचरों ने हाईकोर्ट में मुकदमा कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने सभी की नियुक्तियों को रद्द कर दिया।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद आंदोलन पर उतरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र, रिपोर्ट सुना रहे थे समीर आत्मज मिश्र। दिल्ली में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 5 सालों में यहां डेंगू का संकट खतरनाक तौर पर उभरा है। मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और अस्पतालों में जगह नहीं है। सोमवार को दिल्ली सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए बैठक की। हमारे सहयोगी रोहित जोशी ने इस बारे में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से बात की।
पिछले साल जो डेंगू था उसके मुकाबले इस साल मैं मानता हूँ कि थोड़ा ज्यादा है, और ये साइक्लिक है, एक साल थोड़ा कम होता है, एक साल थोड़ा ज्यादा होता है, और हमने जितना सोचा था पेशेंट उससे थोड़ा ज्यादा है, और सरकार ने अपने सारे हॉस्पिटल्स में तैयारी की हुई है, जितने भी पेशेंट है सबको एडमिट किया जा रहा है। चीफ मजिस्ट्रेट के साथ मीटिंग की थी, उनको आदेश दिया गया है कि जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जैसे कि घर घर में जाके डेंगू है उसको मच्छर को चेक करना, पानी में कहीं लार्वा तो नहीं है, कुछ नहीं है, लोगों को मोटिवेट करना, पैम्फलेट देना, तो सारे एक्टिविटीज को DM SDM वगैरह मॉनिटर करेंगे जो कि MCD कर रहे हैं।
इससे पहले किस किस तरह के प्रयास कर रही थी सरकार? और
मतलब अभी भी MCD कर रही थी परंतु लोगों से शिकायतें मिल रही थी हमारे को, तो उसको मॉनिटर करने के आदेश दिए गए हैं कि DMs और SDMs को तहसीलदार सारे मिलकर उसको मॉनिटर करेंगे पूरे पूरे अपने एरिया।
कितने मामले सामने आए हैं डेंगू के अब तक?
डेंगू के जो मामले हैं लगभग 1287 या कुछ नंबर है, लगभग 1215।
तो आपका कहना है अब सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है?
हाँ बिल्कुल तैयार है। हॉस्पिटल के दो चीजें हैं, फर्स्ट इज प्रिवेंटिव, प्रिवेंशन का जो काम है वो MCD को दिया गया है, सारे कम्युनिकेशन करना, दवाई छिड़कना, स्कूलों में दवाई डालना, लोगों के घर घर जाके करना, वो सारा का सारा काम MCD को दिया गया है, उसके लिए पूरी पेमेंट दिल्ली सरकार उनको करती है, हर साल करती है,
और जो हॉस्पिटल का इंजाम है वो दिल्ली सरकार के पास भी है, एमसीडी के पास भी है, केंद्र सरकार के पास भी है, प्राइवेट में भी है। दिल्ली सरकार ने अपने जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें सब में पूरे प्रॉपर इंजाम किए हैं, टेस्ट कराने के लिए भी पूरे इंजाम किए गए हैं, जो डेंगू किट्स हैं पूरी टेस्टिंग किट है सब जगह रखा गया है, तो हमने पूरी तैयारी की हुई है। और जहाँ तक मेरा अपना पब्लिक से कहना है कि भाई आप थोड़ा सा पैनिक ना हो, डेंगू इज वेरी मच इजीली क्यूरेबल, इसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं होती है।
लेकिन अभी डॉक्टरों ने कहा है कि अगले जो चार हफ्ते हैं वो डेंगू के लिहाज से बहुत आक्रामक हो सकते हैं, डेंगू इस बीच में काफी फैल सकता है।
वो तो बात ठीक है, परंतु डेंगू के लिए देखो हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले तो मच्छर को ना होने दें, अपने घरों को चेक करें, पानी को देखें कि पानी का स्टैग्नेंट है, ये साफ पानी में होता है, रुके हुए साफ पानी के अंदर होता है, नाली में गंदे नाले में नहीं होता। तो लोगों को ये गलतफहमी है कि शायद कहीं गंदगी होगी, कूड़ा होगा तो वहां पे पैदा होगा, हमारे घर में नहीं होगा, हमारे घरों के अंदर होता है, ऑफिस के अंदर होता है। सबसे पहले मच्छर को पैदा होने से रोके। दूसरी बात, मच्छर के कटने से बचें, पूरी बाजू के कपड़े पहने, पूरे लेग्स को कवर रखें या मच्छरदानी का प्रयोग करें, और दिन में ऑल आउट वगैरह लगाएं जिससे मच्छर ना काटे आपको। ऐसा होता है कि मच्छर, ये जो है डेंगू का मच्छर है, दिन में ही एक्टिव होता है, रात को कुछ नहीं करता है, तो दिन के टाइम में ज्यादा आपको केयर करने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, अगर आपको हेडेक है, फीवर है, उल्टी है, इस तरह के कुछ सिम्टम है, तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। सेल्फ मेडिकेशन कैन बी डेंजरस, डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर जो सलाह दे उसके हिसाब से काम कीजिएगा। चौथा पॉइंट ये है कि आप हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखें। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर के अंदर पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट की कमी नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी तरह का जूस पीजिएगा, आप नारियल पानी लीजिएगा, नींबू की शिकंजी लीजिएगा, और इसके अलावा जब हॉस्पिटल में जाएं अगर दिखाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही एडमिशन लें।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से बात कर रहे थे रोहित जोशी। और अब अखबारों की समीक्षा का वक्त है। दिलनवाज पाशा अखबारों पर नजर डाल चुके हैं, बताइए आज के अखबारों में क्या क्या कुछ खास है।
जी, दिल्ली में जो डेंगू का प्रकोप है उससे जुड़ी खबरें अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। भारत टाइम्स ने एक खबर प्रकाशित की है जिसमें एक बिस्तर पर कई मरीज लेटे हुए दिखाए गए हैं और पूछा है एक बेड पर कितने रोगी हों। अलग अलग अखबारों में और खबरें हैं, लेकिन कल जीतन राम मांझी की पार्टी और एनडीए बीजेपी के बीच जो समझौता हुआ है इस खबर को सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। जनसत्ता लिखता है, मतभेद मिटे माने मांझी। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में बदलाव का जो प्रस्तावित मसौदा है उसे मंजूरी मिली है और इसे भारतीय अखबारों ने भारत के लिए कामयाबी बताया है। अमर उजाला लिखता है, भारत को बड़ी कामयाबी, सुरक्षा परिषद विस्तार का प्रस्ताव मंजूर। और इसी खबर पर दैनिक भास्कर लिखता है, हमारी स्थायी सीट का रास्ता साफ, चर्चा पर सभी राजी, चीन भी झुका। तो भारतीय अखबारों ने इसे इस नजरिए से लिया है।
जी, और अभी चर्चा होनी है और एक साल तक चर्चा होनी है और अभी सिर्फ प्रारूप पर चर्चा की।
जी प्रारूप ये मसौदा तैयार हुआ है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर का जिक्र करना चाहूंगा जिसके मुताबिक एक मंत्री ने नवरात्र के दौरान अब मांस पर प्रतिबंध का प्रस्ताव दिया है। बात कही है, आपको ध्यान होगा महाराष्ट्र में
जी अभी जो
नवरात्र जैन दौरान मांस पर प्रतिबंध लगाया गया था जिसे मुंबई हाईकोर्ट ने तो हटा दिया था। लेकिन इस पर अखबार कहता है कि हाईकोर्ट ने भले ही मीट बैन हटा दिया हो लेकिन मंत्री ने एक और मीट बैन का प्रस्ताव दे दिया है। जिक्र करूंगा द हिंदू की एक खबर का जिसके मुताबिक गुजरात भारत में निवेश के लिए सबसे अच्छा राज्य है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के आधार पर ये कहा गया है। और द इंडियन एक्सप्रेस में पहले पन्ने पर एक खबर है जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में तीन युवकों के शव मिलने के बाद तनाव है।
बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए। और अब वो कार्यक्रम जिसका आप सब इंतजार कर रहे हैं, यानी कि फैलाओ जियारा। प्रोफेसर सुनील खिल्लानी की श्रृंखला इनकार्नेशंस की 10वीं कड़ी। आज बात होगी कन्नड़ भाषा के क्रांतिकारी कवि बसव के बारे में। पेश कर रहे हैं मोहनलाल शर्मा।
पहले इन शब्दों को जरा गौर से सुनिए।
मेरी देह को वीणा की डांड बना लो, मेरे मस्तक को तुम्बा, वीणा के तार हो मेरी नसें और उंगलियां उसका मिजराब, मुझे थाम लो कसकर और झंकृत करो अपने 32 राग, हे कुडल संगम देव।
भगवान शिव की आराधना में रची गई ये भावमय पंक्तियां 12वीं सदी के कवि बसव की हैं। बसव क्रांतिकारी विचारों वाले एक धार्मिक गुरु थे। वो जाति प्रथा को पाप मानते थे और उनके मुताबिक गरीबी में पैदा होने वाले इंसान में ही सच्चे मानवीय मूल्य होते हैं। कन्नड़ भाषा में रचे गए उनके गीतों में जितनी सादगी है उतनी ही गहराई भी। कन्नड़ दक्षिण भारत की एक द्रविड़ भाषा है जो आज लगभग 4 करोड़ लोगों के बोलचाल का माध्यम है। इस पूरे कार्यक्रम में हम आधुनिक कवि और विद्वान ए के रामानुजन के शानदार तर्जुमों के हिंदी रूपांतरण का इस्तेमाल कर रहे हैं। संगत सेक्सोफोन पर की है कदीरिया गोपाल नाथ ने। सदियों से बसव के शब्दों ने न सिर्फ भारतीय कवियों, लेखकों और नाटककारों को प्रेरित किया है, बल्कि टेड ह्यूज जैसे ब्रिटिश कवि भी उनसे अछूते नहीं रहे हैं। रामानुजन द्वारा किए गए बसव के अनुवादों में ह्यूज को अपने ही जैसी सहजता और साफ गोई दिखाई देती है। खासतौर पर बसव के काव्य में उन्हें अपनी जवानी और अपरिपक्वता के दौर में लिखी गई कविताओं की ध्वनियां सुनाई देती हैं। उनका कहना है कि बसव की काव्य शैली किसी आकाश ध्वनि जैसी है। आज बसव खुद भी किसी आकाश ध्वनि की तरह हो गए हैं। भले ही विद्वान उनके काल और जीवन के ब्यौरों के बारे में एकमत न हो, उनके अनुयायी उनकी पूजा करते हैं। उनके लिए तो वो उनके बसवन्ना यानी बड़े भाई और यहाँ तक कि बसवेश्वरा यानी भगवान बसव हैं। बहरहाल उनका असली परिचय उनका काव्य ही है। साफ गोई से भरी अपनी कविताओं में वो एक ऐसे सामाजिक धार्मिक सुधारक के रूप में सामने आते हैं जो कहीं कहीं दुनियादारी के दबावों के आगे झुक भी जाता है। कुडल संगम देव यानी भगवान शिव के अनन्य भक्त बसव अपनी कविताओं में काव्य के शास्त्रीय मानदंडों की परवाह नहीं करते।
हे कुडल संगम देव, मैं अज्ञानी ताल छंद को कैसे जानूं? सुरलय का गणित मुझे मालूम नहीं है। मैं मात्राओं की गणना से हूं कब परिचित? हो सुख दुख से परे प्रभु तुम, मेरा गायन मेरा प्रेम सब तुम्हें समर्पित।
मेरा गायन मेरा प्रेम सब तुम्हें समर्पित, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, सबको निरक्षरों को भी खुला आमंत्रण। बसव के काव्य में एक ऐसी सादगी और सारगर्भिता है जो उन्हें आधुनिक बनाता है। आज अगर भारत के कई लेखकों के लिए 12वीं सदी का ये गुरु प्रेरणा स्रोत है तो उसके पीछे यही अनौपचारिकता, बोलचाल की भाषा और गैर पारंपरिक राजनीतिक चेतना है। गिरीश कर्नाड भारत के प्रख्यात आलोचक और नाटककार हैं।
The marvelous thing about Basava and his followers was that they rejected any kind of structure.
बसव और उनके अनुयायियों की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने हर तरह की स्थायी संरचना को नकारा। वे लगातार गतिशील और बदलावों के लिए तैयार रहना चाहते थे और जीवन से निरंतर संवाद करते रहना चाहते थे। जाहिर है उनका उद्देश्य किसी को अपने ज्ञान से प्रभावित करना नहीं है, वे तो सिर्फ आम जन से और ईश्वर से संवाद कर रहे हैं और बातचीत की यही शैली उन्हें आधुनिक बनाती है।
बसव का शुरुआती जीवन भी आध्यात्मिकता की तलाश में बीता, बुद्ध और कुछ हद तक गांधी की तरह। नायक वो है जो अपना उच्च कुल और घर बार त्याग कर ज्ञान की खोज में भटकता है। बसव का जन्म 12वीं सदी के आरंभ में वर्तमान कर्नाटक के गांव में हुआ था, जिसे उन्होंने जल्द ही त्याग दिया। ऐसा कहा जाता है कि उनके कुलीन ब्राह्मण माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उन्हें संस्कृत धर्म ग्रंथों की शिक्षा दी गई, लेकिन मजे की बात यह है कि उन्होंने अपने कुल की रूढ़वादी मान्यताओं पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने धमाकेदार अंदाज में घर छोड़ दिया। एक कथा के अनुसार तो उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार से नाता तोड़ा बल्कि अपने जनेऊ को भी काटकर फेंक दिया।
He spent several years in spiritual retreat here at a place known as Kudala Sangam.
कुडल संगम नाम के इस स्थान पर बने आश्रम में वो बरसों तक रहे। कुडल संगम वो जगह है जहां दक्षिण भारत की विशाल कृष्णा नदी में मालप्रभा नाम की एक छोटी नदी आकर मिलती है। यहां से नदी का दूसरा तट लगभग 1 मील दूर दिखाई देता है। बाद में कुडल संगम नामक ये पद बसव की कविताओं में बार बार आता है, क्योंकि इसी जगह पर उन्हें अपने आराध्य शिव का एहसास हुआ था। आध्यात्मिकता में डूबे बसव को दुनियादारी से भी परहेज नहीं था। वो कल्याण शहर में बस गए। वहां उन्होंने खजांची की नौकरी कर ली। शादी करने में भी उन्होंने चतुराई दिखाई, नौकरी में तरक्की पाते रहे और अंततः कालचुरी वंश के बिजल्ला नरेश के मुख्य खजांची के पद तक पहुंचे। लेकिन बसव की नौकरी भी उनके व्यक्तित्व की गहराई का महज एक आवरण भर थी। बसव के विचारों, उनकी आध्यात्मिक आस्था और उनकी भावनाओं का संकलन वचनों में मिलता है। वचन दरअसल कर्नाटक में विकसित हुई एक लयात्मक काव्य शैली है जिसे बसव ने पूर्णता दी।
युवनारवा 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 एंदेनिसदिरय्या
कल्याण में बसव के व्यक्तित्व में नए आयाम जुड़ गए। खजांची और कवि तो वो थे ही, यहाँ वो वीर शैव धर्म प्रचारक समुदाय के मुख्य गुरु के रूप में सामने आए। इस आंदोलन की शुरुआत के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका दर्शन रहस्यवादी है। इस आंदोलन का उभार एक विद्रोही मगर यथार्थवादी शक्ति के रूप में हुआ। वीरशैव धार्मिक सत्ता और भेदभाव पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की खिल्ली उड़ाते थे और व्यक्तिपरक आस्था के हिमायती थे। इस समुदाय में बिना किसी भेद के सबका स्वागत था और आस्था ऐसी कि गुरु, सन्यासी और अमूर्त लिंग के रूप में स्वयं भगवान शिव उपासक में ही समाहित समझे जाते थे। पूरे कुडल संगम और कर्नाटक के कई हिस्सों में बसवन्ना की ऐसी मूर्तियां, प्रतिमाएं और चित्र हैं, जिसमें वो किसी युवा क्रांतिकारी कवि जैसे दिखाई देते हैं। बसव और वीर शैव अपने समुदाय के सभी सदस्यों को एक बराबर मानते थे और कमाल तो ये था कि 12वीं सदी में होने के बावजूद महिलाओं को कम से कम सिद्धांततः बराबरी का दर्जा हासिल था। प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक जाति को सम्मान प्राप्त था।
तुम लोहार हो क्योंकि तुम लोहा गर्म करते हो, तुम धोबी हो क्योंकि तुम कपड़े धोते हो, तुम जुलाहे हो क्योंकि तुम्हें कपड़े बुनना आता है, तुम ब्राह्मण हो क्योंकि तुम वेदों का पाठ करते हो। झूठ, सफेद झूठ है ये जाति जन की कथाएं। सबसे बड़ा आदमी तो वो है जिसने स्वयं को जान लिया।
बसव की कविताओं में उनका आत्मसंघर्ष और आत्म संशय जरूर दिखाई पड़ता है। साथ ही अपने काव्य में वो किसी राजनीतिक या पुरोहित सत्ता से नहीं बल्कि सीधे ईश्वर से मुखातिब नजर आते हैं। बसव और उनके अनुयायियों ने न सिर्फ निर्ममता से ब्राह्मणवाद का मजाक उड़ाया बल्कि घड़ों, कंघों, तीर धनुष और प्यालों में भगवान को मौजूद मानने की लोक आस्थाओं पर भी करारी चोट की। उन्होंने लोगों से ईश्वर को व्यक्तिगत स्तर पर महसूस करने की अपील की और इसीलिए कुछ लोग उन्हें भक्ति परंपरा का अग्रदूत भी मानते हैं। बसव इस राह की दुश्वारियां अच्छी तरह से जानते थे। 12वीं सदी का कोई अनुयायी यदि एक बार अपने सामाजिक रीति रिवाजों से नाता तोड़ने का फैसला कर ले तो उसके लिए अपने समाज में वापस आना असंभव था।
मार्ग भक्ति का, आरी की धारसा, आगे बढ़े तो चीरता है अंग और वापसी की राह भी उतनी ही लहूलुहान है।
10 साल पहले अलमाटी में एक बड़ा बांध बनाकर कृष्णा नदी के बहाव का रुख मोड़ा जा चुका है, मगर आधुनिक तकनीक की मदद से बसव के अंतिम पड़ाव तक आज भी पहुंचा जा सकता है। हम दोनों नदियों के संगम स्थल से लगभग 40 मीटर नीचे गहरे कुएं की तलहटी में उतर आए हैं। यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये एक पूजा स्थल है। यहाँ पर काफी संख्या में लोग बसवन्ना के आगे नतमस्तक होकर प्रार्थना कर रहे हैं। बसव की स्मृतियों को संरक्षित करने और उनकी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार का काम आज लिंगायत नाम का एक संपन्न धार्मिक समुदाय करता है। लेकिन बसव अगर आज जीवित होते तो वो जाति समूह जैसे इस समुदाय और उसके अंदरूनी वर्गीकरणों से जरूर दुखी हुए होते। आज उनके लगभग 70 से 80 लाख अनुयायी हैं, जिनमें अधिकतर उत्तरी कर्नाटक में रहते हैं। लिंगायत शब्द लिंगम से बना है। लिंगम शिव का प्रतीक एक चिकना छोटा पत्थर होता है जिसे इस समुदाय के सदस्य एक थैली में रखकर अपने गले में पहनते हैं। हालांकि लिंगायत धार्मिक रूप से एक अल्पसंख्यक समुदाय है, मगर कर्नाटक की चुनावी राजनीति में उनका बोलबाला है और पार्टियां उनके वोट के लिए होड़ करती हैं। आखिरकार सामाजिक और राजनीतिक तंत्र को बसव की चुनौती की परिणति एक भीषण टकराव में हुई। दरअसल बसव ने एक अछूत लड़के और एक ब्राह्मण लड़की के अंतरजातीय विवाह को मंजूरी दे दी। दोनों के परिवार उनके समुदाय के सदस्य थे। इससे राजा के सब्र का बांध टूट गया। उसने दमन के आदेश दिए, बरातियों की आंखें निकाल ली गईं और उन्हें हाथियों से कुचल डाला गया। इसके बाद दंगे फैल गए और बसव के क्रोधित अनुयायियों ने अपने गुरु की अहिंसा की सीख को दरकिनार कर दिया। फिर राजा को तो मार डाला गया, मगर वीर शैव समुदाय बिखर गया और हताश बसव को शहर छोड़कर भागना पड़ा। थोड़े ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेखक गिरीश कर्नाड ने इस प्रसंग पर एक नाटक भी लिखा है।
The whole idea of egalitarianism of being caste, everyone being together was beautiful in theory.
सबकी बराबरी और सबके मेल जोल का ये सिद्धांत कल्पना में तो बहुत सुखद था, लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने इसे व्यवहार में लागू करने की गलती की और एक ब्राह्मण लड़की का विवाह अछूत जाति के लड़के से करा दिया गया। अब जैसा कि आपको मालूम है, मामला अगर इसके उल्टा होता तब भी बात ठीक थी, यानी ब्राह्मणों को निचली जाति की औरतों से शादी करने की अनुमति थी, मगर ये तो अकल्पनीय था। इस विवाह की भयंकर प्रतिक्रिया हुई। राजा के आदेश से दूल्हा और दुल्हन को सड़क पर तब तक घसीटा गया जब तक कि उन्होंने दम नहीं तोड़ दिया। इसके बाद तो बसव के युवा अनुयायी गुस्से में पागल हो गए और फिर महाविनाश हुआ। सारा आंदोलन एक झटके में खत्म हो गया सिर्फ उस एक शादी के कारण। ये पूरा प्रसंग बेहद दिलचस्प है क्योंकि भारत में आज भी ये दृश्य किसी अंतरधार्मिक विवाह में दोहराए जा सकते हैं। इसी लिहाज से बसव के वचन आज भी प्रासंगिक हैं।
बसव ने अपने कुछ वचनों में कहा है कि जीवन का अंत कैसा होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। हम लाख कर्मकांड करें, लाख नेकियां करें, होता वही है जो देवता चाहते हैं। लेकिन अब हम जो कविता सुनेंगे उसमें बसव कहते हैं कि अपने अंतिम समय में वो भगवान शिव से वरदान पाने के लिए किसी राजा चोल की तरह राजसी वैभव वाले मंदिर नहीं बनवा सकते। क्या बसव अपनी अक्षमता से दुखी थे? बिल्कुल नहीं। वो हमेशा से ये जानते थे कि राजाओं के बनवाए भव्य मंदिरों के मुकाबले समर्पण और भक्ति के उनके गीत ज्यादा कालजयी होंगे।
अमीर लोग शिव के मंदिर बनवाएंगे, मगर मैं गरीब क्या करूंगा? मेरे पांव स्तंभ हैं, काया मंदिर, मस्तक स्वर्ण शिखर है। सुनो हे कुडल संगम देव, जड़ चीजें गिर पड़ेंगी, वही बचेगा जो है चलायमान।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। सानिया मिर्जा और लिएंडर पेस ने पिछले दिनों अमरीकी ओपन में जिस तरह मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर महिला युगल और मिश्रित युगल वर्ग के खिताब जीते, उसके बाद उन्हें लगातार बधाई तो मिल ही रही है, साथ ही उनके जीवट को मानने वालों में भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ भी शामिल हो गए हैं। राहुल द्रविड़ का मानना है कि सानिया और लिएंडर सिर्फ टेनिस के खिलाड़ियों ही नहीं बल्कि देश के सभी खिलाड़ियों के लिए बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। द्रविड़ ने कहा कि यह अद्भुत है कि 42 साल की उम्र में भी पेस एक कैलेंडर वर्ष में तीन बड़े टूर्नामेंट जीत रहे हैं। द्रविड़ ने कहा कि उन्होंने दोनों मैच देखे और सानिया और लिएंडर को जीतते देखना अच्छा लगा। उधर भारत के तीरंदाजों ने कोलंबिया में विश्व कप के चौथे चरण में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत के सर्वेश पारिक, संदीप कुमार और राजेंद्र सनम की जोड़ी ने अपने से बेहतर रैंकिंग वाली वेनेजुएला टीम को 231-222 के स्कोर से मात दी। वहीं हॉकी इंडिया लीग अपने चौथे संस्करण में नए नियमों के साथ बंधी हुई दिखाई देगी। कल हॉकी इंडिया के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि अब मैदानी गोल होने पर टीम के खाते में एक नहीं दो गोल जुड़ेंगे।
आइडिया यही था कि हॉकी को क्या हो गया, जो हमने सर्च भी करवाते हैं इस पे, उन्होंने कहा कि हॉकी में एक स्किल होता था जो लोग देखना चाहते थे। अब हो क्या गया कि लंबी हिट मारो, हिट हिट हिट, डी में गई बॉल, कैरिड हुआ, फिर पेनल्टी कॉर्नर, ड्रैग फ्लिक कर दिया। तो चलिए आप एक गोल से हार भी रहे हो, ड्रैग फ्लिक से हो गया, किससे हो गया, बट देन यू स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू विन इन द एंड, इवन इफ लास्ट मिनट पे आप एक फील्ड गोल कर देते हैं। तो गेट मोर स्किल इन टू द गेम, उस पर्पज से आइडिया है सारा ये, हॉकी में वापस स्किल लेके आओ, फील्ड गोल लेके आओ जो मिस होने शुरू हो गया था।
इसके अलावा अगर किसी खिलाड़ी को जानबूझकर गोल करते समय गिराया जाता है तो उसके बाद मिले पेनल्टी स्ट्रोक पर भी दो गोल दिए जाएंगे, लेकिन इसका फैसला अंपायर करेंगे। हॉकी इंडिया लीग में हर टीम में 20 खिलाड़ी होंगे जिनमें 12 भारतीय और 8 विदेशी खिलाड़ी शामिल होंगे। हर टीम में दो गोलकीपर होंगे। नरेंद्र बत्रा ने यह भी साफ किया कि जब तक पाकिस्तान से संबंध सामान्य नहीं होते तब तक उनके खिलाड़ियों का लीग में खेलना मुश्किल है।
और अब आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के शिक्षा मित्रों की नियुक्ति को अवैध ठहराने के बाद प्रदेश भर में आंदोलन शुरू हो गए हैं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और राजकोषीय घाटा कम करने के लिए ब्राजील की सरकार ने खर्च में कटौती और कर बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यूरोपीय संघ के देशों के गृह मंत्री ब्रसेल्स में हुई एक अहम बैठक में मध्य पूर्व से आए 1,20,000 प्रवासियों को कोटा के आधार पर सभी सदस्य देशों में बांटने के विवादित प्रस्ताव पर एकमत से सहमत नहीं हो सके हैं। हंगरी में प्रवासियों को अवैध रूप से दाखिल होने से रोकने के लिए नए कठोर कानून लागू हो गए हैं। अमेरिका का कहना है कि उसे लगता है कि रूस सीरिया में सैन्य अड्डा स्थापित कर रहा है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। आप तक कार्यक्रम पहुंचाया तकनीकी सहयोगी राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात होगी 1 घंटे बाद विश्व भारती में। दिलनवाज पाशा और निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।